वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं
हम लोग देख रहे थे कैसे आदमी का पतन होता है. भगवान ने दो श्लोक में बताया. कहते हैं ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते. अगर आप विषयों का ध्यान करते हो, ध्यान मतलब निरंतर बार बार अगर ध्यान करते हो तो क्या होगा, उसके साथ एक संग हो जाएगा. क्यों संग हो जाता है, क्यों संग होता है? अभी सर तो आपको उत्तर देना चाहिए, पीछे साइंस क्या है? क्योंकि हमको सुख मिल रहा है. हम तो उसी विषय का ध्यान करेंगे ना जो हमें अच्छा लगता है. तो विषयों के ध्यान करने से ही सुख की प्राप्ति होती है, थोड़ा सुख मिलता है. तो उसके साथ में संग हो गया. संग होने के बाद फिर क्या होता है, संगात संजायते कामा. उसके बाद जो है डिजायर आ जाएगी. तो ये कैसी डिजायर है? इररेजिस्टेबल डिजायर. आपको करना ही पड़ेगा, वो आप रोक नहीं सकते. अब वो पक्की डिजायर बन गई. अगर उसमें कोई बाधा आ गई, किसी कारण से नहीं हुआ तो क्रोध, और अगर पूरा हो गया तो लोभ. तो भगवान ने लोभ क्यों नहीं लिया, क्यों क्रोध लिया? बताइए.
ज्यादातर पूरा नहीं होता,
ज्यादातर पूरा नहीं होता, एक नंबर. दूसरी चीज, विषय कम है चाहत ज्यादा है. विषय कम है चाहत ज्यादा है, सप्लाई कम है डिमांड ज्यादा है. करोड़पति बहुत बनने के सब बनने को तैयार हैं, मगर रुपए कम है, उतने रुपए नहीं है, सब कैसे करोड़पति बनेंगे? इसलिए भगवान ने क्रोध लिया कि ज्यादा करके आपको दुखी होगा, आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी, इसलिए क्रोध. और जब क्रोध आया तो बोले सम्मोह हो जाएगा. सम्मोह क्या है? सम्मोह है कि आप डेल्यूडेड हो गए, डेल्यूशन आ गया. अच्छा, शंकराचार्य जी कहते हैं अविवेक है कार्य का अकार्य विषय. क्या मेरा कार्य है, क्या अकार्य है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में अविवेक आप सोच नहीं सकते हो. अर्जुन को हुआ ना, अर्जुन को मोह हो गया था, अमोह होने के कारण वो भगवान से पूछता है कि हम इस युद्ध क्षेत्र में मेरा क्या धर्म है बताओ। ड्यूटी अपनी आदमी भूल जाता है। सम्मोह सम्मोहात स्मृति भी प्रणा, बोले स्मृति स्मृति क्या है, बोले शास्त्र आचार्य उपदेश हित संस्कार जनिताय स्मृति स्याद विभ्रम भ्रंश। आपने शास्त्र पढ़ा है, आपने आचार्य से उपदेश सुना है कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ये आपके माता पिता हैं, ये गुरु हैं, इनका सम्मान करना चाहिए, तो वो स्मृति गई। आप किससे बात कर रहे हो कुछ मालूम नहीं है, आप गुरुजन से बात कर रहे हो। और शंकराचार्य जी तो इतनी दूर कह देते हैं कि वो जो है गाली भी दे देता है, देखो गुरु को गाली दे दिया, ऐसा हो जाता है क्रोध के अंदर में। स्मृति गई, स्मृति में तो लिखा रहता है ना कि भई ये आपके आदरणीय है गुरुजन है, ये तो स्मृति बताती है। अब वो स्मृति अब अवेलेबल नहीं है क्रोध के कारण। जैसे ही स्मृति गई तो आपके जितने भी डिसीजन है बुद्धि क्या करेगी, बुद्धि देखो हर समय स्मृति को कंसल्ट करती है, हर समय बुद्धि स्मृति को पीछे क्या हुआ रिकॉर्ड लाओ, फिर जो है डिसीजन देते हैं। अब स्मृति अगर अवेलेबल नहीं है तो डिसीजन कैसा होगा, डिसीजन का। अब बुद्धि ना सर प्रणश्यति, प्रणश्यति का यहां पर शंकराचार्य जी कहते हैं पुरुषार्थ योग्य पुरुषार्थ अयोग्य भवति इति अर्थ। अब पुरुषार्थ करने लायक नहीं रहा, वो अयोग्य हो गया पुरुषार्थ के। बहुत अच्छा, तो इससे बाहर निकलने का उपाय क्या है? आप तो समझा तो दिए सीढ़ी नीचे उतरने की है, बाहर कैसे निकले? तो बाहर निकलने का उपाय बोलते हैं विषयों के ध्यान के बदले, हाँ बोलो क्या उपाय होगा, भगवान का ध्यान करो। उपाय एक ही है, विषयों के ध्यान के बदले, विषयों का ध्यान से शुरू हुआ ना, एक विषय एक सेंस ऑब्जेक्ट के लिए हम उसका चिंतन करते गए चिंतन करते गए चिंतन करते गए, बोले उस विषय के बदले भगवान का अगर चिंतन करो तो आप निकल पाओगे। आप कैसे कहते हो, कुछ रेफरेंस दोगे? बोला हाँ रेफरेंस देते हैं ना आपको, क्या रेफरेंस है? बोला भागवत में आया है। क्या है? विषयान ध्यायत चित्तम विषयेषु विसज्जते, विषयान ध्यायत, आप विषयों का अगर ध्यान करते हो तो वो क्या होता है, चित्तम विषयेषु विसज्जते, वो चित्त जो है जाके मन जाके किसमें लग जाता है, विषय में लग जाता है। और फिर कहते हैं माम अनुस्मरण चित्तम मई एव प्रविधीयते, माम जो भगवान का चिंतन करता है तो वो चित्त कहां जाके लीन होता है, भगवान में लीन होता है। तो जिसका आप ध्यान करोगे उसमें लीन हो जाता है। और हम लोगों ने देखा भी है ना जप के अंदर, जप हम करते हैं क्यों करते हैं नाम, उसके पीछे साइंस मालूम है? आप सारा दिन राजू 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 मेरा बेटा राजू 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 करते रहते हो तो आपका प्रेम किससे होता है, राजू से होता है। उसके बदले अगर आप भगवान का नाम लेना शुरू कर दो, देखो भगवान का नाम लेते हैं मगर यहां पर राजू लगा रहता है, सिर में राजू चलता रहता है, नाम भगवान का चल रहा है, मुख से जो है आप राम 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 करते हो मगर यहां पर मन में राजू का चिंतन चलता रहता है। तो जिसका आप स्मरण करोगे मन आपका वहां लीन होगा। देखो संसार में केवल दो चीज है, केवल दो चीज है, एक संसार है और दूसरा भगवान है। अगर आप भगवान का चिंतन नहीं कर रहे हो तो किसका चिंतन कर रहे हो, है ना, एकदम साफ है ना। और अगर संसार का चिंतन नहीं कर रहे हो तो अब बताओ आप सारा दिन किसका चिंतन करते हो, संसार का चिंतन हम करते हैं भगवान का नहीं होता है, दो में से एक होगा। विवेक चूड़ामणि में हम लोग पढ़ रहे हैं सवेरे की कक्षा में रविवार, तो उसमें शंकराचार्य जी कहते हैं विषय विष की तरह है, उन्हें शुरू में ही खत्म करो, जैसे शुरू होता ना उसी टाइम खत्म करना है। तो विषय का ध्यान न करके अगर परमात्मा का ध्यान किया जाए तो फिर मन परमात्मा में जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले अपने कर्म को कर्म योग बनाना पड़ता है, ताकि बैकडोर से भगवान आपके मन में घुस जाए, बैकडोर से घुस जाए। भगवान ने बताया कि स्थित प्रज्ञ का एक गुण है, उसका इंद्रियों पर संयम है। कैसे संयम है, क्या एग्जाम्पल दिया था, जैसे टॉर्टाइज का है, जैसे ही खतरा देखा उसने सारे लिंब जो है अंग अंदर कर लेता है और ऊपर ढाल, अब जो मर्जी कर लो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह से जो है वो स्थित प्रज्ञ संयम रहता है। अच्छा, ये स्थित प्रज्ञ कैसे संयम कर पाता है, कैसे संयम कर पाता है, राज क्या है इसके पीछे, क्योंकि उसने ऊंचे पद का चयन किया है। ऊंचे पद का मतलब परमात्मा को पकड़ा है उसने, इसलिए जो है वो कर पाता है। उसका लक्ष्य क्या है, हम लोगों ने 61वें श्लोक में देखा मत परह, आया था ये वर्ड मत परह, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आपने मत परह परमात्मा को अगर पकड़ा है सब कुछ ठीक है, अगर आपका जीवन का लक्ष्य अगर परमात्मा नहीं है तो क्या है आपका लक्ष्य, संसार है। देख लो, मिलाते जाओ जो भगवान कहते जाए आप मिलाते जाओ, साइंस विज्ञान एकदम पूरा पूरा ठीक है एकदम। जब तक आपका मत पर लक्ष्य नहीं है, परमात्मा लक्ष्य नहीं है, तब तक आपका लक्ष्य जो है संसार की वस्तुएं हैं। अगर आपका मत पर में अगर मन डाला हुआ है तो नियंत्रण सहज है, ये इंद्रियां भी आपको साथ देंगी, मन भी साथ देगा। अगर मत पर है पर आपका लक्ष्य नहीं है, परमात्मा अगर आपका लक्ष्य नहीं है, तब इंद्रियां आपकी साथ नहीं देगी, मन भी साथ नहीं देगा, क्योंकि इंद्रियां और मन बाहर जाएंगे। और परमात्मा कहाँ है, भीतर है, पहले उसको भीतर देखना है। भीतर में एक बार पहचान लो परमात्मा को, फिर आपको खुली आंख से परमात्मा सब जगह नजर आएगा। मगर पहली पहचान कहां करनी होगी, अपने अंदर, हमारे अंदर भी है परमात्मा। तो आपके पास में अगर परमात्मा है तो बाहर क्यों खोजने जाओगे, पहले जो 24 घंटे आपके साथ है उससे साक्षात करो, उससे मिलो पहले, मिलने के बाद में फिर देखोगे कि सब जगह है वो, तो एक ही है, तब आपकी दृष्टि बदल जाएगी। तो जिसका मन मत पर है वो काफी इंस्पायर्ड है। तो कोई इंस्पिरेशन आपको मोटिवेशन जब तक आपका हायर गोल नहीं होगा ना, तब तक नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होता है। हमारे भीतर ये स्थूल शरीर है ना, स्थूल शरीर से सूक्ष्म क्या है, सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर में एक मन है। अगर आपको मान लो किसी अंग में दर्द हो रहा है, या मान लो आपके पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर बोलता है ये गॉल ब्लैडर है, आपको दर्द हो रहा है, दर्द कहाँ महसूस होता है, मन में होता है ना। आप दर्द को हटाना चाहते हो, मन को शांत करना चाहते हो, तो गॉल ब्लैडर को काटने के लिए तैयार हो, या गैंगरीन हो गया कहीं पर, या कोई अंग काटना पड़ा तो आप काटने को तैयार हो, क्यों, सूक्ष्म के लिए, सूक्ष्म की खुशी के लिए, क्योंकि मन सूक्ष्म है। स्वतंत्र सेनानी जो स्वतंत्रता के लिए युद्ध करते हैं, वो शरीर मन सब का त्याग करने को तैयार होते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य और ऊंचा है। और अगर आपने परमात्मा को बना लिया लक्ष्य, तब आप सब देने को तैयार हो, सब कुछ देने को तैयार है परमात्मा के लिए। तो ऐसा आदमी उन्नति करता है, धीरे 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 आप आगे बढ़ेंगे। और जिसने नहीं किया जिसने परमात्मा का चयन नहीं किया, मत परह का चयन नहीं किया, उसका मन कहाँ जाएगा? लॉ ऑफ रिमाइंडर, अगर परमात्मा को आपने नहीं पकड़ा तो किसको पकड़े हो? वहीं रहोगे आप। तो ये साधक जो है मत पर है, अगर मत पर हो जाओगे संयम सहज है, जैसे ही मत पर होगे संयम सहज हो जाएगा। जैसे एक स्पोर्ट्समैन होता है, उसने क्या किया, उसने एक लक्ष्य बना लिया। अब जैसे हमारे बच्चे जो दौड़ते हैं ना क्रॉस कंट्री वाले, लक्ष्य बना लिया तो उसके लिए फिर तैयारी करते हैं, खाना पीना उसके हिसाब से, उसके हिसाब से एक्सरसाइज, उसके हिसाब से दौड़ना। और जो कुश्ती लड़ना चाहता है वो कितना खाता है, उसको कितना प्रोटीन चाहिए, उसको वजन बढ़ाना है बढ़ाता है, उसको ताकत चाहिए, मगर उसका लक्ष्य क्या है? एक लक्ष्य पकड़ के रखा, उस पर चलता है। मगर ऐसे स्पोर्ट्समैन ही बहुत कम मिलते हैं, सब तो नहीं करते ऐसे। कितने आपको रास्ते में दिखाई देते हैं कुश्ती करने वाले? बहुत कम है। उसी तरह से आध्यात्मिक ज्ञान के चाहने वाले के विषय में भी भगवान लिखते हैं, बोले बहुत कम है। अध्यात्म ज्ञान पाने के लिए इच्छुक बहुत कम लोग हैं। भगवान कहते हैं मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मावेति तत्वतः। देखो मनुष्यानाम सहस्त्रेषु, सहस्त्र मतलब हजार, सहस्त्रेषु प्लूरल है, बोले हजार 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 के अंदर में कोई एक सिद्धि पाने के आता है, सिद्धि पाना इसलिए आता है, मुझे चाहिए, मुझे जानना है। और उनमें से यततम अपि सिद्धानाम कश्चिन मावेति तत्वतः, इतने चाह, एक तो हजारों हजारों लाखों में एक आदमी मिला, अगर ऐसे अगर सौ आदमियों को मिल जाए तो ये मतलब नहीं कि सौ के सौ आपको जो है तत्वित बन जाएंगे, नहीं होगा। उसमें से बोला कश्चित एक आ, ये जो है ना एकदम सत्य बात है। जिनमें मिशन वर्ल्ड ओवर जो है एडवर्टाइज करता है कि वेदांत कोर्स करने आओ, कुल मिला के 300-400 एप्लीकेशंस आती हैं। जब उनका इंटरव्यू किया जाता है उसमें से 100 लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, जैसे ये लोग हम चाहते हैं। और उनमें से फिर कोर्स खत्म करते हैं 60-70, फिर 70 में से फिर आधे आदमी बोलेंगे हम ब्रह्मचारी बनेंगे, आधे नहीं बनते, वो गृहस्थ में वापस चले जाते हैं। देखो सारी दुनिया के अंदर में कुल मिला के 25-30 आदमी मिलते हैं हर 3 साल पर, एवरेज कितना हुआ? ये संख्या है, ये प्रोपोर्शन है। देखो अध्यात्म में श्रवण मनन निधिध्यासन से सुख पाना खिलवाड़ नहीं है, बहुत कम लोगों को होता है। गौतम बुद्ध लोग जैसे लोग जो हैं राजपाट छोड़ के निकल आते हैं, ऐसे कितने लोग होते हैं जिनको श्रवण के अंदर में, अध्यात्म के श्रवण के अंदर सुख मिलता है? बहुत कम लोगों को सुख मिलता है, खिलवाड़ नहीं है ये। और ये कहते हैं यहाँ पर भगवान योगे अनिर्विन्न चेतसा, अनिर्विन्न चेतसा मतलब क्या है कि योग के अंदर आपको कैसी बुद्धि चाहिए जो जिसमें कोई भी उद्वेग ना हो, कोई भी एजिटेशन ना हो। मन अगर अशांत रहेगा तो कभी भी योग नहीं होगा, भगवान के साथ में कभी योग नहीं होगा। मन को शांत होना चाहिए। चले चले सब कोई कहे, मगर पहुंचते कितने हैं? बहुत कम। क्यों? हमारा कठोपनिषद कहता है छुरस्य धारा, जैसे छुरी के ऊपर चलना बहुत कठिन है, बोले इसी तरह से अध्यात्म ज्ञान भी वैसा ही है, बहुत मुश्किल है। आप ऐसा मत सोचो कि ये मतलब जो फूलों का मार्ग है, लोग सोचते हैं आचार्य आते हैं उनको जो हम लोग क्या कहते हैं उसको पूर्ण कुंभ से उनका स्वागत करते हैं, ऐसा नहीं है, इतना सहज कुछ नहीं। तो हमने गिरने की सीढ़ी देखी, अगर हम मत पर को भूल गए, परमात्मा को भूल गए, तो तो हम कहाँ खो जाएंगे? हम संसार में खो जाएंगे। ये गिरने की सीढ़ी। ध्यायतो विषयान, ध्यायतो मतलब अपने परमात्मा का ध्यान बंद कर दिया, वो नहीं कर रहे हैं। देखो ध्यान दो में से एक का होगा, अगर आप विषय का ध्यान करते हो तो पतन जरूरी है। शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि कहते हैं कि विषयों में गंध मात्र सुख नास्ति, गंध मात्र भी नहीं है, मगर हम क्या सोचते हैं कि विषय में बहुत सुख है, इसको भी ले लो, इसको भी ले लो, इसको भी ले लो। मगर शंकराचार्य जी कहते हैं उसमें गंध मात्र भी नहीं है, उसमें स्मेल तक, सुख की स्मेल तक भी नहीं विषयों में है। अच्छा, अब आपको एक डिफिनेशन और नहीं सुनाते हैं। विषम याति इति विषय, विषय किसको कहते हैं? विषम याति, याति मीन्स प्राप्ति, जिससे आपको विष मिले। विषय क्या देते हैं? मतलब विष देते हैं, विष देते हैं मतलब दुख देते हैं, इसलिए उसको विषय कहते हैं। अब बोलते हैं कैसा है ये? तो शंकराचार्य जी कहते हैं निहंती अत्तारम विषयम, अत्तारम जो विष को पीता है। आप लोगों ने सुन चुके हैं जो विवेक चूड़ामणि क्लास करते हैं, जो विष को पीता है केवल वही मरता है, विष को छूने से नहीं मरता है। कोई मरता हुआ देखा है जो विष को बोतल को छू लिया या विष की बोतल को पकड़ के इधर से उधर ले जाता है, कभी मरते देखा है? नहीं। मगर विषय स्मरणातपि, विषयों को केवल सोचने से और देखने से मर जाता है। बड़ी मुश्किल की बात है, उसके बारे में केवल सोचो, ध्यायते विषयान पुंस, केवल सोचो या देख लो, बस गया। एक बार देखने से क्यों जाते हो भाई हॉथर्न मॉल? ऐसे विंडो शॉपिंग करने जाते हैं, गया गया। घर आके सोचेगा ये देखा था, वो देखा था, ये लेना चाहिए, वो लेना चाहिए। तो कैसे काम को जीतें? अब ये प्रश्न आता है, गिराया किसने हमको? हमारे काम ने गिरा दिया ना, विषयों का हमने चिंतन किया, चिंतन करके उसके साथ संग हो गया, संग के बाद फिर काम आ गया, काम मतलब डिजायर आ गई। अब उस डिजायर को हम कैसे हटाएं? तो भागवत में आता है असंकल्पात जयेत कामम क्रोधम काम विवर्जनात अर्थानर्थया लोभम भयम तत्व अमर्शनात्। असंकल्पात जयेत कामम, अगर काम को जीतना है तो क्या करो? संकल्प ही नहीं करो। देखो स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ध्यायते विषयान पुंस, आप बराबर उसका ध्यान कर रहे हो, वो संकल्प स्टेज है। उस स्टेज से आप जो है बार 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 ध्यान करोगे, संग हो जाएगा। तो कैसे वहां से निकले? असंकल्प, संकल्प ही नहीं करो। अब जैसे मान लो आपके पास में एक मकान है, अब आपके मन में संकल्प आए एक अगर मकान और अगर हो जाता। देखो दूसरे मकान का केवल सोचने में सुख आने लगता है, हैं? फिर हम बना लेते हैं, इतने का मकान आएगा, इतने बैंक को देंगे, भाड़ा इतना आएगा, इतना बच जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई सो मेनी ईयर्स। तो देखो भाड़े वाला पैसा देगा, उसका वहां देते जाएंगे इंस्टॉलमेंट, इतना बचेगा, मल्टीप्लाइड बाई दिस इतना हो जाएगा। करते 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 आपने डाल दिया, फंस गया। अब आपकी रात की नींद गई। अब वो टेनेंट बोलेगा बाथरूम का बल्ब नहीं जल रहा है, प्लीज कम एंड रिप्लेस इट, यू हैव टू डू इट। डिशवाशर नहीं काम करता है, आओ बदली करो। दुनिया भर का झमेला। तो बोलते संकल्प के टाइम में उसको बंद कर दो, संकल्प के टाइम में उसको खत्म कर दो, बंद हो जाएगा। नहीं करोगे गड़बड़ है। क्रोधम काम विवर्जना, बोलो क्रोध, बोलो क्रोध किसके किसके कारण आया था? काम के कारण। अगर कामना कोई कम कर दे तो क्रोध बढ़ेगा, हाँ कम हो जाएगा। अगर आपकी 100 कामना थी, अगर 50 पूरी हुई, 50 नहीं पूरी हुई, तो 50 बार क्रोध आएगा ना। अगर हमने कामना को ही कमती कर दिया 20 पर ले आए, उसमें 10 पूर्ण हुई 10 नहीं हुई, कितनी बार क्रोध होगा? आप 10 बार। तो क्रोध को अगर कमती करना है तो अपनी कामनाओं को कमती करो, ठीक है। और अगर लोभ को आपको कंट्रोल करना है तो बोलते हैं कि अर्थ, अर्थ मतलब मनी, अर्थ अनर्थ में देखो, आपके रुपए के अंदर में उसकी कैलमिटी देखो, उसमें कितना झंझट फंसा हुआ है। आप तो बूंद बूंद इकट्ठा करके सारा जीवन खत्म करके आप पैसे इकट्ठे करके रख जाते हो, किसके लिए? अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए। आप ये सोच के कर तो पता नहीं, बोलो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मगर हम ये नहीं सोचते हैं कि हम जब इंडिया से आए थे तो हमारे पास क्या था? $1 था, $20 था, $100 था, यही तो लेके आए थे हम लोग। अगर हम कर सकते हैं तो हमारे बच्चे क्यों नहीं कर सकते? करेंगे, फिर भी हम करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। तो लोक का धन के अर्थ अनर्थ के विचार से उसको किया जा सकता है, मगर भय को, भय को कैसे आप हटाओगे? हमें डर लगा रहता है सब चीज से, हर चीज से डर लगता रहता है। ये हमने रखा हुआ है, रहेगा कि नहीं रहेगा, ये संबंध बनेगा कि बनेगा नहीं, होता है, परीक्षा में पास करेंगे कि नहीं, नौकरी मिलेगी कि नहीं, कल सवेरे उठ पाएंगे कि नहीं, दुनिया भर का भय लगा रहता है। तो ऐसा कहते हैं कि जहां पर आपने द्वैत देखा वहां भय है, जहां आप समझते हो कि ये वस्तु, ये व्यक्ति और ये चीजें हमसे दूसरी हैं, अलग हैं, ये छूट जाएंगी, वहां भय है। भय आपका तभी जाएगा, इंक्लूडिंग मृत्यु है, वो है केवल तत्व ज्ञान से। तत्व ज्ञान से ही आपका भय जाएगा परमानेंटली। बहुत अच्छा, भगवान गीता में कहते हैं कि धर्म अवरिद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भर्तृसव। वो अर्जुन, जितने भी लोगों के जो काम है ना, अरे वो तो मैं हूं, मगर कौन सा काम? धर्म अविरुद्ध। धर्म अविरुद्ध मतलब जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। बोले धर्म के रूप से जो कामना है आपकी, वो ठीक है, राइटियस वे ते जितना कमाना है कमाओ, कोई असुविधा नहीं है। भगवान कहते हो मैं हूं, मगर आप अगर अधर्म के हिसाब से काम कमाते हो तो क्या है? भगवान कहते मैं वहां नहीं हूं। मगर आपको अगर भगवान से जुड़ना है तो क्या करना होगा? सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ तदोच्यते। भगवान कहते हैं कि अगर हमको मेरे साथ जुड़ना होगा तो क्या करना होगा? सर्व संकल्प संन्यासी, हमको सर्व संकल्प कामना भी नहीं, सर्व संकल्प संन्यासी, कामना का प्री स्टेज। और स्थिर प्रज्ञ का पहला लक्षण क्या देखा था हमने? प्रजाति यदा कामान सर्वान, ये कहा था। मगर ध्यान के अंदर अगर आपको योग होना है तो वहां भगवान कहते हैं सर्व संकल्प संन्यासी। तो संकल्प और कामना में थोड़ा डिफरेंस है। संकल्प जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, उसको ध्यान करते गए करते करते गए तो वो जाके कामना बन जाता है। महाभारत ने कहा कामम जानामी ते मूलम संकल्पात किल जायते। ओ काम, ओ डिजायर, मैं तुम्हारा मूल जानता हूं। मूल क्या है? बोले संकल्प से तुम शुरू होती हो। अगर संकल्प से स्टार्टिंग पॉइंट है तो हम संकल्प का ही गला घोट दें, फिर कामना नहीं होगी। तो विषय के चिंतन से आदमी मरता नहीं है मगर पुरुषार्थ अयोग्य हो जाता है। पतन का मतलब बुद्धि नाश प्रणश्यति का यह मतलब नहीं है कि आदमी मर गया, ऐसा नहीं है। क्या हुआ? बुद्धि नहीं है, पुरुषार्थ अयोग्य भवति, अब पुरुषार्थ करने लायक नहीं रहा। बहुत अच्छा। अब लैडर ऑफ राइज देखते हैं, अभी तो लैडर ऑफ फॉल देखा ना, तो लैडर ऑफ राइज क्या है तो सुबी जी बता देंगे। भज गोविंदम का श्लोक नंबर 9, सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। 4 स्टेप, सिंपल 4 स्टेप के अंदर आप जो है ऊपर पहुंच जाओगे। क्या है स्टार्टिंग पॉइंट? सत्संग। पहले आपको सत्संग में आना होगा। सत्संग में आने से आपको क्या बोलेंगे कि आपको डिटैच होना है, किससे?
संसार से।
तो वहां आपको क्या मिल जाएगा? निसंगत्वम। वो कभी नहीं आपको कोई संत बोलेगा कि संसार में जुड़ जाओ, बच्चों से जुड़ जाओ, माँ बाप से जुड़ जाओ, अपनी प्रॉपर्टी से जुड़ जाओ, बैंक बैलेंस से जुड़ जाओ, नहीं। वो बोलेंगे यहां से हटो हटो हटो, इनका संग छोड़ो, इनका संग छोड़ो। इनका संग छोड़ो का मतलब क्या हुआ? संग छोड़ो का मतलब क्या, मैं अपना बैंक बैलेंस चिन्ना मिशन को दे दूं? नहीं। संग छोड़ो का मतलब क्या, अपने बच्चों को दिया हूं अनाथ आश्रम में? नहीं। माँ बाप को बूढ़े आश्रम में दे दूं, ओल्ड एज होम में? नहीं। ऐसा नहीं। क्या इसका मतलब? इसका ये मतलब है कि ये हमारे सुख के सोर्स नहीं है, बस इतना जानना है। संग का त्याग का मतलब है कि ये हमारे सुख के सोर्स नहीं है, स्रोत नहीं है। मेरा बच्चा, मेरी बेटी, ये हमको बुढ़ापे की मेरी लाठी है, ए भूले यहां गड़बड़ा गया, ये मेरा सुख है, ऐसा नहीं सोचना है। रहो साथ में, सब कुछ रहो, बैंक बैलेंस है ठीक है, मगर उसके कारण मैं सुखी हूं, ऐसा नहीं। ये सुख का कारण नहीं बन सकता। देखो, अनित्य कोई वस्तु सुख का कारण नहीं बन सकती, ये सब पकड़ के रख लो। कभी भी कोई अनित्य वस्तु आपको नित्य सुख कभी नहीं दे पाएगी, कभी नहीं देगी। पैसा अनित्य है, शरीर अनित्य है, घर अनित्य है, सारे रिलेशन अनित्य हैं, कहां से सुख मिलेगा? परमानेंट सुख नहीं मिलेगा। तो भगवान ये नहीं कहते सब छोड़ दो, सबके साथ रहो, मगर मन ही मन जानो कि ये हमारे सुख का सोर्स नहीं है। अच्छा, तो वहां आपको निसंगता आ गई। निसंग बनने से क्या होगा? मोह आपका गया, डेल्यूशन चला गया। क्या डेल्यूशन था? डेल्यूशन यही था कि ये जगत सत्य है और ब्रह्म मिथ्या है। अब आपको पता लगा ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। मिथ्या का क्या मतलब? मिथ्या का मतलब ये सारे के सारे लिमिटेड इन वन पीरियड ऑफ टाइम है। आपका शरीर, आपके पैसे, आपके संबंध, जो कुछ भी है, घर, सब लिमिटेड इन टाइम है, इसलिए उसको हम मिथ्या कहते हैं। तो निर्मोह हो गए, निर्मोहत्व निश्चल तत्वम। अब आपका अगर मोह संसार से छूट गया, आप कहां पहुंच गए? देखो, दो ही तो चीज है, आपको बार बार हम समझाते हैं, अगर हमारा आत्मा से छूट गया तो कहां पहुंच जाएंगे? आत्मा में पहुंच जाएंगे सीधा, मगर हम छोड़ते ही नहीं, क्या करें, हम नहीं छोड़ते। भगवान तो कहता है कि तुम छोड़ के आ जा। पंडरपुर में क्या है, भगवान ऐसे खड़े, बीच में नदी है, भक्त उधर खड़ा है, भगवान कहते आ जा, वो बोलता नदी है, भगवान कहते हैं कमर तक पानी है, तू आ, नहीं आता है, उधर ही खड़ा है। तो निश्चल तत्व जीवन मुक्ति, हमारा काम क्या है? अनात्मा को छोड़ना, आत्मा को पकड़ना, बस इतना ही काम है। आत्मा को पकड़ लिया फिर क्या हो गया, जीवन मुक्त हो गया, जीवन मुक्त हो गए। एक कोर्ट में एक वकील ने कटघरे में खड़े एक अपराधी से पूछा, ये सीढ़ी है? बोलता हाँ सीढ़ी है। बोले सीढ़ी कहाँ जाती है? सीढ़ी कहाँ जाती है? बोले तो प्रश्न बहुत कठिन है। बोले नीचे से देखो तो ऊपर जाती है, ऊपर से देखो तो नीचे आती है। अब वो क्या उत्तर दे? ये सीढ़ी कहाँ जाती है इसका प्रश्न का उत्तर आपको हम क्या दें? तो कठिन प्रश्न है। आप नीचे से देखो तो ऊपर जाती है और ऊपर से देखो तो नीचे आती है। तो यहां पर हमने नीचे गिरने की सीढ़ी देखी, विषयों का ध्यान से पतन हो गया। और भज गोविंद में हमने क्या देखा? सत्संग के हम चार स्टेप के अंदर में हम जीवन मुक्त हो जाते हैं। अब यहां पर भगवान कहते हैं विषयों के चिंतन को सब अनर्थों का मूल बतलाया गया, अब यह मोक्ष साधन बतलाया जाता है। 64 और 65 श्लोक के अंदर लेडर ऑफ राइज है, कैसे ऊपर जाना है। लेडर ऑफ फॉल देखा, लेडर ऑफ फॉल के बाद में अब ऊपर कैसे जाना है, दो श्लोक में आएगा। देखो हम लोग का मूल प्रश्न कितने थे? 4। स्थित प्रज्ञ से का भाषा, समाधिस्थ से केशव, पहला प्रश्न था का भाषा। दूसरा प्रश्न क्या था? किम प्रभासित, कैसे बोलता है, किम आसीत, कैसे बैठता है, किम ब्रजेत। 4 प्रश्न थे। देखो ये 62वें 63वें श्लोक के साथ में 3 प्रश्नों का उत्तर हो गया। पहले प्रश्न का उत्तर 55 नंबर श्लोक में था, प्रश्न था 54 में, स्थित प्रज्ञ से का भाषा 54वां श्लोक था। और 55वें श्लोक में उसका उत्तर था प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, ये उसका पहले प्रश्न का उत्तर था। दूसरे प्रश्न का उत्तर किम प्रभासित 56 और 57 में था। तीसरा प्रश्न किम आसीत 58 से 63 श्लोक तक भगवान ने उसका उत्तर दे दिया। अब चौथा प्रश्न क्या बचा? किम ब्रजेत, उसका उत्तर भगवान 64 से लेके 68वें श्लोक तक देंगे। चौथे प्रश्न का उत्तर 64 से लेके 68 उसमें आ जाएगा। किम ब्रजेत मतलब क्या है? किम ब्रजेत संसार में वो कैसे चलता है, कैसे रहता है। देखो संसार में रहते हुए भी उसका पूरा संयम है, पूरा संयम है। ज्ञानी का संयम पूरा है, वो संसार में रहता है। तो देखो 64वें श्लोक में भगवान बताएंगे साधक के बारे में, साधक कैसे बढ़ता है। 65वें श्लोक में भगवान बनाएंगे साधक कैसे स्थित प्रज्ञ बन जाता है। 64वें श्लोक में साधक की बात करेंगे और वो साधक 65वें श्लोक में कैसे स्थित प्रज्ञ बन जाता है ये बताएंगे। और 66वें 67वें श्लोक में बताएंगे कि जो लोग अज्ञानी हैं, अयुक्त हैं, उनका क्या हाल होता है। और 68वें श्लोक में उपसंहार है, वहां पर वो बताया जाएगा कि स्थित प्रज्ञ पूरा संयमी है, पूरे कंट्रोल के अंदर में है, ऐसा भगवान बताएंगे। तो हम 64वां श्लोक पढ़ते हैं।
राग द्वेष वियुक्तैस्तु,
राग द्वेष वियुक्तैस्तु
विषयानिन्द्रियैश्चरन्,
विषयानिन्द्रियैश्चरन्
आत्मवश्यैर्विधेयात्मा,
आत्मवश्यैर्विधेयात्मा
प्रसादमधिगच्छति,
प्रसादमधिगच्छति राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति।
ये देखो यहाँ साधक की बात चल रही है, तो कहते क्या, राग द्वेष वियुक्त तू, तू का मतलब हुआ एकदम उल्टा, जो अभी बात चल रही थी लैडर ऑफ फॉल की, उससे विपरीत आदमी, विपरीत आदमी मुमुक्षु। वहां पर संसारी की बात हुई, कैसे संसार में विषयों का चिंतन करते करते आदमी गिर जाता है, उससे डिफरेंट, उससे भिन्न। तू, तू का मतलब है अलग, साधक मुमुक्षु। वो क्या करता है, विषयान इंद्रिय चरण। देखो उसकी इंद्रियां कैसी हैं, विषयों में चरण करती हैं, देखो चरण करती हैं, बहुत अच्छा। प्रसादम अधिगच्छति, मगर वो प्रसन्न है। एकदम प्रसन्न है। इसको कंट्रास्ट देखिए, पहले कहा गया ध्यायतो विषयान पुंस, पहले बताया ना भाषा में शुरू, ध्यायतो विषयान पुंस, ध्यान कर रहा है, और यहां पर बता रहे हैं एक मोचे विषय के अंदर चरण कर रहा है मगर फिर भी प्रसन्न है। कितना कॉन्ट्रास्ट है। अच्छा, शब्द से लेके गंध तक उन विषयों के अंदर में इस साधक की इंद्रियां जाती हैं, इस मुमुक्षु की इंद्रियां जाती हैं। अच्छा, मगर इसका क्या रहस्य है, विषयों में जाता है प्रसन्न है, और अज्ञानी विषयों में जाता है और दुखी होता है, प्रणश्यति बताया भगवान ने आगे, क्या रहस्य है। तो भगवान कहते हैं उसके दो विशेषण बताए हैं इंद्रियों के, क्या विशेषण है भाई, एक तो है राग द्वेष वियुक्त, राग द्वेष युक्त ही, हम लोग क्या है, राग द्वेष युक्त ही, वो कैसा है, राग द्वेष वियुक्त ही, उसकी इंद्रियां कैसी हैं, राग द्वेष वियुक्त हैं। और दूसरा क्या है, आत्मवशी इंद्रिय, आत्मवशी, आत्मवशी, आत्मा यहां पर मन को कहा गया है, उसका मन उसके वश में है, आत्मवशी मन उसके वश में है। तो राग देश वियुक्त इंद्रियां, मतलब राग देश अगर वियुक्त इंद्रियां हो और वो इंद्रियां अगर सेंस ऑब्जेक्ट में जाएं तब भी आपको प्रसन्नता मिलेगी। देखो राग द्वेष वियुक्त ही, और राग द्वेष युक्त हो तो क्या होगा, उल्टा होगा, दुख होगा। क्यों दुख होगा, क्यों दुख होगा, दुख होगा, क्यों दुख होगा, दुख इसलिए होगा कि संसार की जितनी अनात्म वस्तुएं हैं सब की सब लिमिटेड इन टाइम है, जैसे ही टाइम उसका खत्म होगा तो उस दिन आपको सुख होगा, दुख होगा, इसीलिए ये याद रखना होगा साइंस आपको, कि आप विषयों में जाओगे तो अल्टीमेटली आपको दुख होगा, राग द्वेष युक्त अगर जाओगे तो दुख होगा, राग द्वेष वियुक्त जाओगे तो प्रसन्नता है। देखो जहां पर राग द्वेष नहीं है ना वहां पर मन जो है वैरागी है, जहां पर लाइक्स डिसलाइक्स नहीं है ना, राग द्वेष नहीं है वहां पर मन आपका वैराग्य है, और वैराग्य मन शांत होता है, वैराग्य मन शांत। बहुत सिंपल सिंपल साइंस है यहां पर। उसकी इंद्रियां, किसकी इंद्रियां, मुमुक्षु की, साधक की इंद्रियां विषयों में जाती हैं मगर उसको विषम नहीं करती। राग युक्त, राग द्वेष युक्त जो जाता है उसकी इंद्रियां उसके मन को विषम कर देती हैं, और राग द्वेष वियुक्त उसकी भी इंद्रियां, देखो राग द्वेष वियुक्त ज्ञानी या साधक दोनों को जीवित रहना है, इसी संसार में रहना है, ये नहीं है कि उसके आंख कान सब बंद करके घूमता है, ऐसा नहीं है, उसकी भी इंद्रियां विषयों में चरण कर रही हैं, जा रही हैं, मगर उसका राग द्वेष नहीं है। इसलिए वैराग्य है। वैराग्य का मतलब उसका मन शांत है, विषय उसको विषम नहीं करते, डिस्टर्ब नहीं करते उसको। तो ये राग द्वेष है कहां? बोले राग द्वेष आपके मन में है, और राग द्वेष सहित अगर आप जाएंगे तो आपको विषाद मिलेगा, प्रसाद नहीं मिलेगा। प्रसाद मतलब प्रसन्नता नहीं मिलेगी, विषाद मतलब आपको दुख मिलेगा। सिंपल एग्जांपल देते हैं आपको। अर्जुन ने जब भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को युद्ध क्षेत्र में देखा तो क्या हुआ? राग। ये मेरे ग्रैंडफादर हैं, पितामह हैं, और ये द्रोणाचार्य हमारे गुरु हैं। अटैचमेंट हो गया। जैसे ही अटैचमेंट हो गया फिर क्या हुआ? कॉलेप्स। क्यों कॉलेप्स हो गया? मैं इनको मारूंगा, ये सब मारे जाएंगे। जैसे ही अटैचमेंट हुआ उसके साथ साथ ये कुछ मन के अंदर इमोशंस आए और वो रोने लगा और उसके हाथ से गांडीव छूट गया, बैठ गया। इमोशंस इतने पावरफुल होते हैं। श्रेष्ठ धनुर्धर रो रहा है, बहुत आत्मवशी इंद्रियां, यहां आत्मा का मतलब मन है, उसकी मन इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल है। जब विषयों में जाती हैं बोले प्रसन्नता होती है, उसको दुख नहीं होता है, कोई दुख नहीं है। क्यों ऐसा होता है? क्यों होता है बताओ? आपको आपको तो बताना चाहिए। क्योंकि उसका मन मत पर है। जो मुमुच्छु है, जो साधक है, उसने किसको पकड़ा है? उसने परमात्मा को पकड़ा है, उसने संसार को नहीं पकड़ा है, वो मत पर है, इसलिए वो प्रभावित नहीं होता। देखो, अगर विषय में रस होगा तो विषय में मन जाएगा, रस होगा। आपको रस की बात आगे बताई थी ना एक जगह, कचौड़ी एंड पकौड़ी, यू हैव टू रिमेंबर दैट कचौड़ी एंड पकौड़ी। आपका पेट खराब हो गया है, आपको उल्टी आ रही है, अजीर्ण हो गया, डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं खाना। अब आपका दोस्त आके कहता है फलानी दुकान की कचौड़ी आई है या अरोमा का सिंघाड़ा आया, अरोमा का समोसा, क्या करें? अभी तो नहीं खा सकते, रस है, क्या करेंगे? फ्रिज में रख दो, अभी ठीक हो जाएंगे फिर खाएंगे हम। देखो, इसको रस कहते हैं। रस अगर है तो राग द्वेष रहेगा। रस जब तक रहेगा राग द्वेष रहेगा। मगर ये व्यक्ति कैसा है? उसका मन कहां है? मत पर है। रस कैसे जाता है? जब मन परमात्मा में लगता है तो रस चला जाता है। जब रस गया फिर तो सहज है, आराम से चलेगा वो। तो गुरुदेव एग्जाम्पल दिया करते थे, राग देश वियुक्त इंद्रिया नाम, फैमिली ऑफ थ्री, कई बार आपने सुना होगा, माँ बाप और बच्चा। बोले इंडिया के मॉल में गए थे, यहाँ के मॉल में नहीं। आज मैं सारा दिन सोचता रहा कि आपको क्या एग्जाम्पल दूं, मेरे को तो एक ही मॉल मालूम है, हॉथर्न मॉल। तो वहां हॉथर्न मॉल के अंदर हमने आज तक कोई खिलौने की दुकान नहीं देखी। टॉयलेट बाहर होगा कहीं पर, अंदर है? अच्छा चलो मान लिया, मैंने नहीं देखा। अच्छा चलो मान लेते वहां है। अब चलते हैं, वो तीनों आदमी चल रहे हैं हॉथर्न मॉल में घुसे, लड़के ने देख लिया, बच्चे ने टॉय की दुकान, घुस पड़ा, दोनों को टाल रहा है, माँ बाप को उधर उधर जाना, उधर जाना, उधर जाना। वहां जाके देखा, माँ बाप कोई रस नहीं है उसमें, कोई राग द्वेष नहीं है, बच्चे का राग है। और चलो एक खरीद के उसको दे दिया। अब दूसरा जो था, अब वहां देखो हॉथर्न मॉल में नवरंग साड़ी स्टोर नहीं है, इसीलिए मेरे को हॉथर्न मॉल छोड़ के इंडिया के मॉल में जाना पड़ा। तो एक टॉय की दुकान, तो वहां देखो सब कुछ होता है, सब एक जगह सब कुछ मिल जाएगा। अब वो नवरंग साड़ी स्टोर में जो है पत्नी घुसती है और पति कैसा है, बेरंग हो गया, बेरंग हो गया, क्यों पता नहीं। आजकल तो कितनी कितनी स्वरूपों की साड़ियां होती है, हमने एक जगह पढ़ा था कितने करोड़ की, 40 करोड़ रुपए की एक साड़ी, 40 करोड़ की एक साड़ी बनाई है,
फोटो पिक्चर भी देखी,
उसकी पिक्चर भी हमने देखी थी, 40 करोड़ की, तो सारा गोल्डन से चल ठीक। तो नवरंग साड़ी स्टोर में जब पत्नी घुसती है तो पति बेरंग हो गए, पता नहीं अब कितने पैसे जाएंगे। अब वो निकले ही ना, 100 साड़ियां दिखा दी, पसंद ही नहीं आता। अब वो जो है बच्चा भी टांगता है, पति बोलता चलो भाई चलो चलो चलो, इसी तरह से निकलते हैं एक हाथ साड़ी वाड़ी लेके। अब वो जो है पुरुष देखता है एक शर्ट की दुकान, घुस गए, पत्नी का भी कोई राग नहीं, बच्चे का भी राग नहीं। तो ये है राग द्वेष। उसके बाद में आत्मवसेई राग द्वेष वियुक्त विषयन इंद्रिय चरण साधक को विधेय आत्मा कहा गया। यहां पर देखो एक वर्ड आया ना, विधेय आत्मा, इस श्लोक के अंदर एक विधेय आत्मा वर्ड आया, आत्मवसेई विधेय आत्मा, ऐसे व्यक्ति को भगवान ने विधेय आत्मा कहा। कौन सा व्यक्ति, जिसकी आत्मवसेई, आत्मवसेई मतलब जिसका मन वश में है और राग द्वेष वियुक्त है, दो चीजें, आत्मा मन में, आत्मा मतलब मन आपके वश में है और राग द्वेष वियुक्त है, राग द्वेष नहीं है, ऐसे लोग को भगवान ने कहा कि ये क्या है, ये विधेय आत्मा है। विधेय आत्मा मतलब उसका अंतःकरण जो है वो आज्ञाकारी है, वो जो कहेगा वो होगा, अंतःकरण आज्ञाकारी है, ये हुआ विधेय आत्मा। यहां पर शंकराचार्य जी लिखते हैं, आसक्ति और द्वेष को राग द्वेष कहते हैं, इन दोनों को लेकर ही इंद्रियां स्वाभाविक प्रवृत्ति हुआ करती हैं। देखो जैसे ही आपके मन में राग द्वेष होगा ना, उसके हिसाब से आपकी इंद्रियां प्रवृत्त होती हैं, जो चीज आपको पसंद होती है वहां आप खड़े हो जाते हैं, जो चीज आपको पसंद नहीं है वहां से आप निकल जाते हैं। परंतु जो मुमुच्छु होता है वह स्वाधीन अंतःकरण वाला, अर्थात जिसका अंतःकरण इच्छा अनुसार बस में है, मुमुच्छु का अंतःकरण उसके बस में है, इच्छा अनुसार है, ऐसा पुरुष राग द्वेष से रहित और अपने बस में की हुई श्रोत्रादि इंद्रियों द्वारा अनिवार्य विषयों को ग्रहण करता हुआ, देखो वो केवल अनिवार्य विषय लेता है, विषयों में चरण करता है, विषयों हजारों विषय हैं, सब दुख, मगर वो कहां जाएगा, अनिवार्य विषय, जहां जहां जो चो उसको कुछ लेना है उतना लेगा। आपको हमने कई बार कहा है कि जिसको भी मत पर का लक्ष्य करना होगा उसको संसार से उतना ही लेना है जितना अनिवार्य है, जितना हमको चाहिए। और हम सब ने क्या किया है, तो ऐसा व्यक्ति प्रसन्नता या स्वास्थ्य को प्रसाद कहते हैं, उसको मिलता है। तो साधारण व्यक्ति राग द्वेष युक्त है और मुमुच्छु या साधक राग द्वेष वियुक्त है। कठोपनिषद में ऐसा कहा गया है कि इंद्रियां जो है ना वो घोड़े हैं, हैं, और विषय क्या है, बोले वो मार्ग जो होता है ना जिस पर रथ चलता है, बोले वो विषय है। लगाम क्या है, बोले लगाम मन है, और उसको लगाम को कंट्रोल कौन करता है, बोले बुद्धि कंट्रोल करती है, बुद्धि सारथी है। अच्छा, जिसका मन और इंद्रिय बुद्धि के कंट्रोल में है वो तो ठीक पथ पर जाएगा, जहां उसको जाना है वहां जाएगा, घोड़ों को लेके, रथ को लेके। मगर आपकी लगाम कंट्रोल ना हो, घोड़े इंद्रियां जो है वो कंट्रोल में ना हो, फिर आपको कहां ले जाएंगी, विषम मार्ग में ले जाएंगी, आपको भटका देंगी। तो उसको आपको प्रसाद कभी नहीं मिल सकता। देखो जब भगवान अवतार लेते हैं ना, तब भी चारों तरफ प्रसन्नता छा जाती है, चारों तरफ प्रसन्नता छा जाती है। क्यों? क्योंकि भगवान में भी राग द्वेष नहीं है। जैसे मुमुक्षु या ज्ञानी जब राग द्वेष वियुक्त हो जाता है तो प्रसन्नता आती है, उसी तरह से जब भगवान आते हैं तो बोलते हैं सारी पृथ्वी में प्रसन्नता आ जाती है। कैसे? नद्यः प्रसन्न सलिला, नदियों का पानी शुद्ध हो जाता अपने आप शुद्ध होने लगता है। तो राग द्वेष युक्त इंद्रियों से अपवित्रता आती है। जैसे ही राग द्वेष बढ़ेगा तो क्या होगा? आपका मन शुद्ध होगा या अशुद्ध होगा? अपवित्रता आती है, अशुद्ध होगा। कैसे अशुद्ध होता है? वो अनर्थकारी परंपरा, हाँ, विद्या काम कर्म के साथ में साथ में अनर्थकारी परंपरा चलती रहती है, वो आप जो है फंस गए आप। अच्छा, ओहो, इसको देख लें, एक श्लोक और देखें हम।
प्रसादे सर्व दुखानां
हानिरस्योपजायते
प्रसन्नचेतसो याशु
बुद्धि पर्यवतिष्ठते
प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते
प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। तो इस प्रसाद से क्या होता है? बोले सारे दुखों की हानि हो जाती है। सारे दुखों की हानि, आपको प्रसन्नता मिल गई। कहाँ प्रसन्नता मिली? मत्पर को पकड़ने से प्रसन्नता मिली। कैसे आपने मत्पर को पकड़ा था? जब आपने राग द्वेष व्युक्त हो गए और मन हमारे बस में है, तब आपको वो चीज मिली। वो चीज क्या थी? वो प्रसन्नता थी। तो जहां पर प्योरिटी आई वहां पर प्रसन्नता मिल जाएगी आपको। बुद्धि आशु परिवेष्टते प्रसन्न चेतसा, और उसका माइंड कैसा है? बोला वो प्रसन्न रहता है। क्यों प्रसन्न रहता है? राग द्वेष नहीं है, मन उसके कंट्रोल में है, प्रसन्न रहेगा ही। बहुत अच्छा। अगर मन प्रसन्न नहीं है ना, तो आपको कॉमेडी भी ट्रेजेडी लगेगी। आप सिनेमा में जाओ मनोरंजन के लिए जाते हो, मगर मन दुखी है अंदर से। कई बार कहते हैं ना, मान लो एग्जाम में फेल हो गए, दोस्त कहते हैं चलो 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 सिनेमा चलते हैं। अब वो सिनेमा में जाता है तो उसका मन कहाँ रहता है? हम फेल हो गए। उसको क्या अच्छा लगेगा कॉमेडी? कुछ नहीं अच्छा लगता है। तो मन अगर प्रसन्न नहीं है तो कॉमेडी भी आपकी ट्रेजेडी लगेगी। और मन अगर प्रसन्न है तो आंटी जी की संस्कृत कक्षा भी अच्छी लगेगी। संस्कृत पढ़ने वाले बहुत कम हैं। संस्कृत कक्षा भी यहाँ पर आपके इस कक्षा में कोई भी नहीं है। संस्कृत कक्षा भी अच्छी लगेगी। और अगर मन प्रसन्न नहीं है तो ब्रह्मा जी भी आके कहें यू आर ब्रह्मन, कुछ नहीं होगा। गुरु आके कहे अरे आप तो आनंद स्वरूप हो, क्यों रो रहे हो? कुछ नहीं होगा। मन अगर प्रसन्न है तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। क्या कारण है भाई? इसके पीछे बहुत सहज कारण है। देखो, जब मन शांत होता है ना तो बुद्धि तीक्ष्ण होती है। मन अगर शांत होगा ना, इंटेलेक्ट जो है बड़ा साफ रहता है उस टाइम में, और जब साफ रहेगा आपका काम हो जाएगा। तो रूट कॉज क्या है, आपको ऊपर जाने की सीढ़ी का मुद्दा क्या है, मूल चीज क्या है? मत पर ये याद रखना होगा आपको। मत पर को छोड़ दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। मत पर जो है मूल चीज है। तो 64वें 65वें श्लोक में अगर हमको मत पर बनना है, वहां पहुंचना है, तो हमको क्या करना होगा? तो यहां पहले कहा गया आपको विधेय आत्मा बनना होगा। विधेय आत्मा किसको कहा भगवान ने? भगवान ने विधेय आत्मा उस व्यक्ति को कहा जिसने आत्मा को वश में किया। आत्मा को वश में किया मतलब मन को वश में किया, नंबर वन। नंबर टू, राग द्वेष वियुक्त, राग द्वेष वियुक्त है और ऐसा व्यक्ति विषयों में जाता है, चरण करता है, मगर फिर भी प्रसन्न रहता है, फिर भी प्रसन्न रहता है। तो प्रसन्नता सेंस कंट्रोल और मत पर से मिलेगी। तब आपको ये समझ में आ रहा है कि इंद्रियों का संयम कितना जरूरी है। और केवल संयम करने से नहीं होगा, संयम करके जो एनर्जी हमने सेव की है उसको मत पर में लगाना। तो सिंपल साइंस है, बहुत सिंपल साइंस है। संयम करो, मन को बस में करो। ये मन सबसे बदमाश है, यही मन आपको ले जाता है बाहर 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 बाहर, चलो बाहर। तो अगर मन को कंट्रोल कर लिया, राग द्वेष को अगर कंट्रोल कर लिया, मत पर को पकड़ लिया, उसको अगर लक्ष्य बना लिया, क्योंकि वही इंस्पायरिंग है, आपको सबसे ज्यादा सुख वहीं मिलेगा। फिर ऐसा प्रसन्न मन वाला साधक श्रवण मनन निधिध्यासन करता है। श्रवण करेगा, मन शांत है, फिर आप बोलोगे आज तो सब कुछ समझ में आया, क्योंकि आपका मन शांत था इसलिए समझ में आया। मन अगर एजिटेटेड होगा, अशांत होगा, तो आपका मन उसी अशांति में फंसा हुआ रहता है, वहीं घूमता रहेगा। और उसके बाद में वो व्यक्ति, उसकी बुद्धि परिवतिष्ठते, एक वर्ड आया ना, परिवतिष्ठते, बुद्धि परिवतिष्ठते, उसके अंदर वो जुड़ गया। और भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है उसको स्वस्थ कहते हैं, इसको स्वस्थ कहते हैं। हम पूछते हैं आप कैसे हो? स्वस्थ है। नहीं नहीं, स्वस्थ, स्व अपनी आत्मा में स्थ, वो स्वस्थ है। तो अब इसके बाद में बाकी श्लोक अब हम अगले दिन देखेंगे। तो आपने लैडर ऑफ फॉल देखा, लैडर ऑफ राइज देखा। अब भगवान बताएंगे कि जो अयुक्त है उसका क्या हाल होता है। अयुक्त मतलब जिसने मत पर को नहीं पकड़ा। अभी तक बात कर रहे थे युक्त, जिसने मत पर को युक्त किया उसका बता रहे थे, और जिसने नहीं किया उसके दो श्लोक में भगवान वर्णन करेंगे, वो हम अग्नि कथा में देखेंगे। ओ
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति, हरि ॐ श्री गुरुभ्यो नमः, हरि ॐ।
Some of us are.